रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी, पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी एक साथ मिल बैठकर इस बात पर विचार करने के लिए उत्सुक हैं कि अपने शेष जीवन को हम और बेहतर ढंग से कैसे जिएं। आज दो अवसर एक साथ हैं, हमें पूरे हफ्ते के इस अंतिम दिन का भी लाभ लेना है, और इतना ही नहीं, आज भगवान ऋषभदेव के प्रथम आहार के उस प्रसंग को स्मरण करके हमें उससे कोई प्रेरणा भी ग्रहण करनी है। दोनों ही चीजें एक साथ होना संभव है। यदि हम भगवान ऋषभदेव के जीवन को उठा करके देखें तो पूरा जीवन प्रेरणा ही देता है। जहाँ जब कोई भी न संसार में ठीक से जीना जानता था, न संसार से पार होने की कोई प्रक्रिया किसी को मालूम थी, ऐसी स्थिति में भगवान ऋषभदेव हमारे बीच आए और उन्होंने हमें इतना ही नहीं कि संसार से पार होने का रास्ता दिखाया हो, उन्होंने हमें संसार में अहिंसक जीवन शैली अपना कर किस तरह जीना चाहिए ये भी सिखाया। उनके साथ कितनी मुश्किलें आईं, उसमें से एक मुश्किल ये भी थी कि 6 माह तक उन्होंने उपवास किया। वो उनकी अपनी स्वयं की तपस्या थी, लेकिन उसके बाद वे जब भी आहारचर्या के लिए उठे तब अनभिज्ञता के कारण लोग नहीं जानते थे कि नौदा भक्ति पूर्वक कैसे मुनि जनों को आहार दिया जाता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने समता और शांत भाव से अपना समय व्यतीत किया। लोग तो नौदा भक्ति नहीं जानते थे तो हाथी घोड़े ले जाकर के उनके सामने खड़े कर देते थे कि राजा महाराजा हैं, शायद ये चीजें लेकर के वे संतुष्ट होकर के हमारे यहां पर आहार ग्रहण कर लेंगे। श्रेयांश राजा और सोम राजा को जब अपने पूर्व भाव का स्मरण हुआ और उन्होंने किस तरह से दान की प्रक्रिया की थी वो उनको याद आई। 6 महीने के बाद तब उन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक आज ही के दिन भगवान ऋषभदेव को आहार दिया। आज से ही दान तीर्थ की स्थापना हुई थी। अपने जीवन में श्रावक संग्रह की प्रवृत्ति जानता है, उसे आज त्याग की प्रवृत्ति सिखाने की शुरुआत भगवान ऋषभदेव ने की थी। और इतना ही नहीं, आज का दिन आखा तीज या कि अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान तो दीक्षा लेते ही साथ 63 विद्यों के स्वामी हो जाते हैं। एकमात्र केवल ज्ञान को छोड़कर उनके समस्त रिद्धियां आपको आप उनके परिणामों की निर्मलता से, इट्स नॉट ए मिरेकल, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आत्मा की विशुद्ध अवस्था से प्राप्त होने वाली शक्तियां हैं जो उनको प्राप्त हुई थी। कि जहां वे जिस रसोई में एक अंजुली भी आहार ग्रहण कर लेंगे, उस रसोई में आहार कभी समाप्त नहीं होगा। यहां तक कि चक्रवर्ती की अक्षौणी सेना भी आकर के और उसमें अनगिनत लोग आहार करके चले जाएं, तो वो आहार अक्षय हो गया था, कभी समाप्त न होने वाला। इसीलिए ये तृतीया शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। और इतना ही नहीं, आज के मुहूर्त को किसी को विशेष शोधना नहीं पड़ता, अपने आप ही ये मुहूर्त है। चाहे हम अपने संसार को व्यवस्थित रूप से जीने की शुरुआत करें या कि संसार से मुक्त होने का उपाय करें, दोनों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है आज ही के दिन। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले अपने गृहस्थी के जो भी कर्तव्य हैं उनके निर्वाह की शपथ ग्रहण करते हैं कि सप्तपदी 7 फेरे लगाकर मैं भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहे गए 7 तत्वों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। और इतना ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी को मैं प्रयोजनभूत इन 7 तत्वों का ज्ञान देकर के ही संसार से विदा लेऊंगा, ये शपथ ली जाती थी। इसलिए उसे सप्तपदी आज के दिन विशेष रूप से। और इतना ही नहीं, कई लोग आज भी बड़ के वृक्ष के नीचे जा करके और उसकी पूजा करते हैं, जबकि स्थिति ये थी कि भगवान ऋषभदेव को वटवृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। उसका प्रतीक है वो वटवृक्ष, वृक्ष की पूजा करने का कोई औचित्य नहीं था, सिर्फ भगवान ऋषभदेव की पूजा का वहाँ एक भाव था। और पुतला पुतलिया बना करके और छोटे छोटे से मटके बनाते हैं जिनमें की सामग्री खाने पीने की रख करके और उनके चक्कर डलवाते हैं। ये क्या चीज़ है? ये राजा सोम और श्रेयांश और उनकी जीवन साथी, उनके वे गुड्डा गुड़िया प्रतीक हैं। और वो जो डबुलियों में छोटे छोटे से घरों में भर करके आहार सामग्री है, वो उसी आहार दान की प्रक्रिया है जो आज भी अलग अलग परंपराओं के अनुसार देखने में आती है। आज का दिन त्याग और दान का दिन है। दूसरे के प्रीति के लिए जो कुछ अपना त्याग किया जाता है उसे दान कहते हैं। दान का महत्व बहुत अधिक है, अपन इसके बारे में फिर कभी बैठेंगे और चर्चा करेंगे। आज हम ये देखें कि हमारे जीवन में जो भी हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। भगवान ऋषभदेव के समय में उन्होंने जो हमें उपदेश दिया कि हम जो भी कर्म करें उन कर्मों को हमें कैसे करना चाहिए, ये हमें समझ हो अगर तो हम अपने कर्मों के द्वारा सुख और शांति पा सकते हैं। आज हम लोग सुबह से शाम तक और पूरे जीवन
कोई ना कोई कर्म करते ही रहते हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं कि हमें कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म नहीं करना चाहिए, कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमें अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। काम कर्म, निषिद्ध कर्म और स्वकर्म, अगर हम इन तीनों पर विचार करें तो काम कर्म तो वे हैं जो हम संसार बढ़ाने वाले कर्म करते हैं, वे सब काम कर्म हैं जिनके पीछे कोई ना कोई सांसारिक कामना और आकांक्षा छिपी हुई होती है। हमने तो आजकल इसी को अपना ध्येय बना लिया है। हम तो भगवान की दान पूजा भी करते हैं, उसके पीछे भी हमारी कामनाएं सांसारिक ही बनी रहती है, और हम जो उस पूजा और दान से हमें लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से वंचित रह जाए। अपने हाथ से किसी को दोष क्या दें, हमारा अपना संस्कार ही ऐसा है, हमारी अपनी मनोवृत्ति ही ऐसी बन गई है कि हम अगर दान भी करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई सांसारिक उद्देश्य छिपा होता है मन के अंदर कि शायद और कुछ नहीं मिलेगा तो चार लोगों के मुझे के बीच मुझे वाहवाही और यश तो मिलेगा, बहुत ही सांसारिक। अगर हम इन काम कर्मों को थोड़ा सा कम कर दें या इन काम कर्मों को करने का ढंग सीख लें, कम तो करना बहुत मुश्किल है, करना ही पड़ेंगे। तो जैसे शाम तक घर गृहस्थी के काम करना होते हैं, पूजा पाठ भी करनी है, सारे कर्म करना है, लेकिन इन काम कर्मों को हमें कैसे करना है ये जुगत, ये आइडिया या कि ये एक टेक्निक हमें मालूम पड़ जाए तो हम अपने जीवन में कर्म का जो लाभ होना चाहिए वो ले सकते हैं। इस पर आज अपन विचार करेंगे। कुछ निषिद्ध कर्म है, सब जानते हैं कि सारे पाप कर्म, हिंसा, झूठ, चोरी निषिद्ध कर्म, ये सब कर्म निषिद्ध हैं जिससे हमारा और दूसरे का अकल्याण होता है, जिससे हमारा या दूसरे की आत्मा का पतन होता है। ये सारे कर्म निषिद्ध कर्म हैं, हमें उन कर्मों को नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। स्वकर्म जिसको स्वधर्म भी कहते हैं, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य का मेरा अपना कर्म होना, मैं पिता हूं तो मुझे अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का, पढ़ा लिखा बनाने का कर्तव्य, पढ़ा लिखा बनाने का कर्तव्य हमारा नहीं है, पढ़ा लिखा बनाने का कर्तव्य जिन गुरुजनों के चरणों में हम उनको सौंपेंगे उनका। पिता का कर्म पढ़ा लिखा के बड़े करने का नहीं है, पिता का कर्म है उसके संस्कारवान बनाना और अपनी पूरी धर्म की परंपरा और अपनी कुल की परंपरा सौंपना। क्या हम अपने माता पिता के कर्म को ठीक से कर पाएंगे जो हमारा स्वकर्म है, स्वधर्म है, इस पर भी हमें विचार करना। पहले जरा सा अपन देख लें कि काम में कर्म को कैसे किया जाए। सुबह से शाम तक एक स्टूडेंट अपनी स्टडी करता है, एक ले मैन अपना कोई भी वर्क करता है, एक ऑफिस में ऑफिसर अपना काम करता है, एक माँ घर में भोजन बनाती है, एक साधु अपनी तपस्या करता है। सारे कर्म हैं लेकिन इन कर्मों को करने की टेक्निक सबकी एक ही है, ध्यान रखें ये कोई अलग प्रक्रिया नहीं है कि मुनि महाराज तपस्या करें उनका कर्म अलग है। अगर उनकी तपस्या के पीछे भी कामनाएं और फला शक्ति है तो उनके द्वारा की गई तपस्या भी उन्हें कोई संसार का छोटा मोटा फल स्वर्ग के सुख देकर के समाप्त करें। जीवन में जो वास्तविक सुख और शांति है, और हो सकता है कि एक माँ भोजन बना रही है लेकिन उसके मन में कैसा भाव है, अत्यंत सहज भाव, पहली चीज कर्म सहज भाव से किया जाए, कर्म करने के अहंकार से कर्म न किया जाए तो वो कर्म सहज है। सूरज उगता है रोशनी बिखर जाती है, हवाएं चलती हैं शीतलता देती हैं, पानी बहता है प्यास बुझा देता है, फलों में वृक्ष लगते हैं सबके लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है, लेकिन आज तक किसी पेड़ में और तरह की मन में आकांक्षा नहीं करी कि मैं उनको एक फल दूंगा, उनसे 5 रुपये मिलेंगे। ये तो मनुष्य है जो कि उसके फोकट में फल लेकर के और फिर उनको बाजार में कहता है कि मैं तुमसे 5 रुपये लूंगा। पेड़ में तो कभी नहीं था, कभी किसी बहती हुई नदी ने ये नहीं कहा कि बिस्लरी में जब तुम्हें 10 रुपये का पानी इतना मिलता है तो मेरे भी पेमेंट करके जाओ। नहीं, ये सब सहज रूप से अपना कर्तव्य करते हैं और कर्तव्य में कभी भी उनके कोताही नहीं करते हैं, कंजूसी नहीं करते हैं, काम चोरी नहीं करते। ये अपना कर्तव्य सहज भाव से, कभी कर्तापने का अहंकार भी नहीं आता है। लेकिन हम देखें कि हम जो भी कर्म करते हैं उसमें पहले अपने कर्तृत्व बुद्धि को पहले लगा दें, मैंने किया। और मजा अपने साथ ये है कि जब वो काम अच्छा होता है तब उसके करने का अहंकार करते हैं, और जब वो काम बिगड़ जाता है तो उसके बिगड़ जाने का संकलेश करते हैं। अहंकार और संकलेश दोनों ही हमारे अपने संसार को बढ़ाने में कारण बनने वाली चीज़ें हैं। करने गए थे कर्म संसार से पार होने के लिए और कर लिया अहंकार। आज तो मैंने 2 पूजाएं की हैं, तो मैंने जो पूजाएं की हैं, क्या पूजा की, वो क्या करेंगे पूजा, उनसे बनती है कोई पूजा करके, मैंने की है पूजा, क्या द्रव चढ़ाई है, मैंने तो आज चावलों में खरीद के लाया था चावल, वो बहुत स्पेशल वाले, और फिर उसमें ही मैंने चांदी के वो मिलाए हैं फूल, देखी नहीं आपने, मैंने कैसे पूजा करी। वाह, सब तो फिर आपने पूजा नहीं करी, आपने अहंकार करा। पूजा तो अभी बहुत देर लगेगी करने में, अभी तो मन में हमारे, तब फिर ये पूजा का कर्म भी जिसको कि हम बहुत शुभ कर्म मानते हैं, वो कर्म भी हमारा संसार बढ़ाने वाला हो गया, इससे हमारे जीवन में कोई शांति और कोई आत्मसंतोष नहीं प्राप्त हुआ। बहुत सावधानी रखना पड़ेगी कर्मों को करते समय। और एक माँ भोजन बनाते हुए विचार कर रही है कि कितना पुण्य का काम मेरे जिम्मे आया है, सारा परिवार इस भोजन को करके सुख समृद्धि और धर्म ध्यान करे, मेरा इस तरह कर्तव्य करना सार्थक हो जाएगा। अगर ऐसे सहज भाव से एक माँ भोजन बना रही है, मानिएगा वो ज्यादा कर्मों की निद्रा और पुण्य का अर्जन कर रही है मंदिर में अहंकार पूर्वक पूजा करने वाले की अपेक्षा। कर्म करने की पीछे हमारी जो मनोवृत्ति, जो हमारी भावनाएं, वो भावनाएं महत्वपूर्ण, ये नहीं समझना है आप जाकर के कल तक पूजा करते थे, महाराज ने कह दिया आपको पूजा नहीं करना, आपको रोटी बनाऊंगा, ऐसा नहीं कर। जो जहां जो भी कर्म कर रहा है वो ये देखे कि उसके कर्म को उसे कैसे करना। मैं जब कर्म करता ही हूँ सुबह से शाम तक, अगर वही भोजन बनाने वाली माँ ये सोच के भोजन बनाए कि हमारे मक्खी ये आया है, जिंदगी निकल गई हमारी, हम कहाँ तक करते रहें, ऐसी भावना से करेगी तो किया हुआ कर्म उसके लिए कोई लाभ नहीं देगा बल्कि अहितकारी है। सहज रूप से किया हुआ कर्म जिसमें कि हम करने का अहंकार नहीं करते, अपना कर्तव्य मान करके अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, जिसको हम कहते हैं कि ना कोई रिस्पॉन्स चाहिए ना कोई थैंक्स चाहिए, मैंने किया मेरे अपने लिए, मेरे अपने सुख के लिए मैंने किया, मेरा अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए मैंने ये काम किया है, मैंने किसी पर कोई उपकार थोड़ी किया। लोग कहें कि मैंने उपकार किया है, बच्चे कहें कि माँ आपने कितना बढ़िया हमको जिंदगी हो, वैसे आप बच्चे नहीं कहते क्योंकि होटल का ज़्यादा अच्छा लगता, माटी बनाया हुआ तो नहीं लगता होगा, तो कहाँ थैंक्स तो उनके मन में आते नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल है। तब हमारे मन में भले ही आ सकता है कि करने वाले ने कितना बढ़िया कर्म किया, लेकिन जिसने कर्म किया है उसके लिए थैंक्स आवश्यक नहीं है, उसने कुछ करके ही अपना आनंद ले लिया। काम जब इस तरह से हो कि अपने आप में पूरा हो, जिसके लिए कहीं कोई भी मन में और बाद में कुछ फल मिलेगा, यदि मैंने किया है इस तरह मैं कहूँगा, इस तरह का भी जिसके पीछे भाव नहीं होता, बनावटी बात चतुर्वेदी हुए, उन्होंने अपना एक संस्मरण लिखा कि जब विदेश से कोई उनके पास रिसर्च पहले आया रिसर्च करने के लिए, तब वो रिसर्च करके वापस लौटने लगा, तब उससे पूछा कि आपको हमारे देश में क्या अच्छा लगा। बोले हमें यहाँ पर एक चीज अच्छी लगी, यहाँ के लोग अच्छे काम करते हैं लेकिन उसका खेल नहीं दे। क्योंकि बोले मैं चले जा रहा था रास्ते से, नदी के किनारे मैं खड़ा था, उसने मैं देखा कि एक व्यक्ति वहाँ से नदी में डूबने लगा। उसने आवाज़ दी कि बचाओ, मैं तो जब तक अपना मन बनाए उसको बचाने का पता नहीं, कहाँ से एक व्यक्ति कूदा और उसने उसको पकड़ करके बाहर निकाल दिया और ये भी नहीं कहा कि मेरा पता मेरे कर ले। मैंने तुम्हें बताया है जिंदगी भर याद रखना, उसने तो कुछ भी नहीं कहा। न वो अपने साथ कोई वीडियोग्राफर लेके आया था कि वो फिल्म बना ले पूरी, बाद में लोग देख सके कि मैंने इतना बढ़िया काम किया। नहीं, उसने तो अपना परिचय तक नहीं दिया, उसने तो बस बचा के उसको बाहर रख दिया। वो हाथ जोड़े हैं, थैंक्स दे रहा है, उसको सोचा कि नहीं वो अपने दूसरे काम में चला गया है। इस तरह से यहाँ हम बिना अहंकार किए अपना कर्म करते हैं, तब फिर वो कर्म हमारे जीवन को कितना आनंद देता है ये अपन करके देखें। जबकि रोज हम कर्म कर रहे हैं सुबह से शाम तक और शाम में कर्म कर रहे हैं, तब इन कर्मों को अगर हम थोड़े से सहज होने की प्रक्रिया, जैसे कि हवाएं सहज होकर बहती हैं, सूरज सहज रूप से उठता है, समय पर अपना सारा काम जो है ऐसे ही हम भी अपने कर्म को कर्तव्य मान करके करें, कर्ता मान करके ना करें। पहली चीज कर्म आर्थिक अत्यंत भावनाओं से पूर्ण होकर के किया, बेमन के और विगार कार्यों की मत करते हैं। दिन भर में एकाध कर्म होगा जो हम पूरे मन से करते हैं और बाकी कर्म से करना पड़ रहे हैं, मजबूरी है इसलिए करते हैं। कई कई बार तो ये नियम दिला देता है पूजा करने का, तो पूजा भी वैसे ही करते हैं कि करना पड़ गई, कहाँ से भी आ गई थी अभी पूजा करने पड़ गई, अब कर ली ठीक है। ये मैं सोचा कि मैं रख लें तो है, मैं सोचा ये मैं रखी, ये मैं सोचा ये मैं रखी, जलन चंदन मत्स्यन सिस्टम सब ठीक है। तो फिर हमारा जहाँ पूजा का कर्म भी हार्दिक नहीं होने की वजह से एक सहज नहीं होने की वजह से अहंकार आ गया था कि मैं पूजा करता हूँ, और या फिर करना पड़ रही है संकलेष पूर्वक हम कर्म करते हैं, तब जो कर्म हार्दिक नहीं होते शांतन सुखाए तुलसी रजना सुधार। जब मैं भगवान का चरित्र चित्रण करूँ तो ये सोच कर कि नहीं कि मेरा कवित्व प्रसिद्ध हो जाएगा, ये सोच कर कि मेरा हृदय भगवान के स्मरण से भर करके सार्थक हो जाएगा, मेरी कविता तो लोग बाद में पढ़ेंगे, मैंने जो भगवान का गुणगान किया है उससे मेरे हृदय में जो पवित्रता आई है वो कीमती है, बाद में लोग मुझे और जो भी आवाज देने बहुत पसंदी है। इस तरह अगर हम हार्दिक होकर के कर्म करें सबसे जो कर्म हमारे अपने, और ध्यान रखें निषिद्ध कर्म तो न हार्दिक होते किए जाते हैं और न कभी सहज होते किए जाते हैं। नहीं तो आप ये कहें कि चोरी करें तो भी हार्दिक होते हैं, हमने पहले कह दिया था कि निषिद्ध कर्म तो सहज हो ही नहीं सकते, न निषिद्ध कर्म हार्दिक हो सकते। किसी भी पाप करने वाले से पूछ ले कि जो हार्दिक होते करता है या कि जब वो कर लेता है तो छाती पर एक पत्थर जैसे रख दिया होता है। इवन झूठ बोलने वाले से पूछ ले कि जब झूठ बोलता है तो हार्दिक होते नहीं करता बल्कि ऐसा लगता है कि क्या करें इसको कैसे बचे। तो जो भी श्रेष्ठ कर्म है जो भी सहज होकर के और हार्दिक होकर के किया जा सकता है, एक नई अपने दुकान में लोगों के सिर के बाल साफ करते हैं, और जब उसको पूछा जाता है कि कैसे करते हैं अपने कर्म बड़ा मुश्किल होता है, तुम तो बृहस्पति भी आ गए कलेक्टर भी आ गए और इसी कोशी पर बैठ जाते हैं और एक सामान्य आदमी से भी इसी समय का होता है, इसके भी सिर के बाल साफ करते हैं, मुश्किल है कैसे करते हैं कर्म। उपनिषद में जिस माई की चर्चा कर्म के पीछे स्थिति भी जो हार्दिकता है वो अलग अलग दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे ही हम सुबह से शाम तक के अपने कार्यों में या कभी इस बात को एनालाइज करते हैं कि हमने जो भी कर्म किया है वो अत्यंत हार्दिक होकर किया है। हम तो माला भी फेरते हैं तो गिन गिन, भगवान का नाम भी लेते तो गिन गिन कर, अरे भगवान का नाम जब विनोबा भावे से पूछा जाता था कि नाम लिखवा दो कितनी बार राम का नाम लोगे, उन्होंने कहा नाम मत लिखना मेरा, संख्या जहाँ बतानी है वहाँ मेरा नाम नहीं लिखना। मैं तो भगवान का नाम ऐसे स्मरण करता हूँ जैसे एक एक साल के बच्चे से पूछा जाए कि वो अपनी माँ को कब तक याद करता, तो वो कहेगा कि मैं भूल तो कभी भी अलग से याद करना पड़े। उस एक साल के बेटे से पूछे जरा कि वो माँ को कब याद करता, भूले ही नहीं वो 24 घंटे में कभी, उसको तो अपने आस पास यही दिखती है। कर्म सब कर रहे हैं लेकिन उन कर्मों को जितना हम अहंकार रहित और संकलेश सहित होकर के करें, जितने सहज और हार्दिक होकर के करें, यही कर्म हमारे जीवन का उत्थान कर सकते, हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और आखिरी बात कि कर्म सतर्क ज्ञान की भावना, हम जो भी कर्म करें सबसे पहले देख लें कि इससे मेरा और आसपास के परिवेश का हित होगा, कल्याण होगा कि नहीं। क्योंकि मुझे कर्म तो करना ही, मैं ऐसा तो नहीं कि मिथिला बैठ जाऊँ, मैं कर्म करूँगा सुबह से शाम तक करूँगा कर्म, लेकिन मैं अपने कर्मों को बस इतना भर ध्यान रखूँगा कि जो मेरा और दूसरे का कल्याण करें, मुझे और दूसरे को सुख पहुँचाएं। ये भोगवादी दृष्टिकोण नहीं, ये नेचर ऑफ प्लेजर, ये तो साइकोलॉजी में सबसे घटिया किस्म के मन का स्तर माना गया, जिसमें कि नेचर ऑफ प्लेजर जो बच्चों को होता है, सुख सुविधा की सामग्री चाहिए कैसे भी मिले, पाप करना पड़ेगा जो कि चुराना पड़ेगा चुरा, नहीं ऐसा नहीं। मैं जो भी करूँगा वो सफर कल्याण की, सिर्फ सुख सुविधा के लिए नहीं, अपने और दूसरे के सुख के लिए नहीं, अपने और दूसरे के भले के लिए। इस तरह अगर हम अपने कर्मों को व्यवस्थित करें तब तो देखिएगा कि हमारे अपने कर्म हमारे जीवन का, जैसा आज हमारे कर्म हमारे जीवन का खत्म कर रहे हैं, हमें कोई आत्मसंतोष नहीं दे पा रहे, हमारे बड़े से बड़े कर्म भी हमें आत्मसंतोष नहीं दे पाते, बड़ी से बड़ी चीज़ों की उपलब्धि भी हो जाने के बाद भी हमें इनर सेल्फ माइंड नहीं मिलता है, हम भीतर भीतर कहीं एक रिक्तता महसूस करते हैं कि सब तो पा लिया लेकिन क्या चीज़ें जो मिस कर रहे हैं, हमें खुद भी नहीं मालूम कि हम किस चीज से वंचित हैं, और जो वास्तविकता है उसी से वंचित है, क्योंकि हमने कर्म तो किया है और उसे सहज हार्दिक और सफर कल्याण की भावना से नहीं किया, इसलिए हमारे जीवन में वो कर्म एक साहित्य में कहानी लिखी किंग ऑफ लाइफ कभी कभी दो तीन लोग बहुत अच्छे हुए हैं इंग्लिश राइटर में, एक ओ हेनरी और एक टॉल्स्टॉय, जिन्होंने बढ़िया कहानियाँ लिखी। उसमें से टॉल्स्टॉय की कहानी आपको बताऊँ, किंग ऑफ लाइफ, शायद अपन को लगे कि हाँ सच है हम कहाँ कहाँ चूक रहे हैं, अपने कर्म करते समय में कर्म करने के लिए मना नहीं करता, सिर्फ निषिद्ध कर्म करने के लिए मना किया गया, काम में कर्म तो कैसे करना है बस ये टेक्नोलॉजी हमें मालूम पड़ जाए, ये हमारे अंदर हमारी चेतना में ये चीज आ जाए कि मुझे करना है तो फिर क्यों ना उसको जरा बेहतर ढंग से किया जाए, जब मुझे जीवन जीना ही है तो क्यों ना मैं अपने बेहतर ढंग से जीवन जी, एक तो सूत्र अपने जीवन का हम बना लें, चाहे अपने ऑफिस में लगा के रखें, चाहे अपनी दुकान में, चाहे अपने घर में, कल से आज का दिन मैं बेहतर ढंग से जी। बेहतर ढंग से जीने का मतलब ये नहीं है कि कल मैंने रसगुल्ला नहीं खा पाया तो इसलिए अगर रसगुल्ला खा लूँगा तो बेहतर ढंग से होगा, कल मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो क्या अगर अच्छे कपड़े पहनने गए तो मेरा जीवन बेहतर है, ये नहीं। बेहतर सब समझते हैं कि बेहतर के बारे में क्या, कल कल जहाँ जहाँ मैं चूक गया था आज मैं वहाँ वहाँ अपने को संभाला, कल जिन जिन चीज़ों से मैंने दूसरे को तकलीफ पहुँचाई थी आज वहाँ वहाँ मैं अपने को संभाला, सब कहलाएगा कि हाँ मैंने कल से बेहतर बेहतर, कल तो गुस्से के 100 मौकों में से हर मौके पे चूक गया था और हर मौके पे मैंने गुस्सा कर लिया था, आज आपसे निर्णय तो मौके पर भले ही चूका हूँ, लेकिन एक मौके पर मैंने समाधान धारण किया था। आज मेरा सबसे बेहतर जीवन जीता, बेहतर जीवन जीने का या बेहतर कर्म करने का एक ही हमारा लक्ष्य। लाइफ में ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। एक बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर, चढ़ावा कलोरों पर फोटो का चढ़ता, गाड़ियां आती हैं, जो लोग अटल के चलते हैं देवी वहां सरेंडर हो जाते। हाँ, इतना उसका प्रभाव है उस मंदिर का। तब उस मंदिर की मैनेज करने के लिए 10-20 पुजारी रखे गए, तब कहीं का काम चलता था। इतना बड़ा है यहाँ, उसमें जो मुख्य पुजारी है उसकी भी पोस्ट है। मंदिरों में भी सेवा करने वालों की अलग अलग पोस्ट है, किसी की बड़ी पोस्ट, जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी पोस्ट होगी वो उसकी कम सेवा करे, वो सेवा दूसरे से लेगा है। सेवा करने वालों की बड़ी पोस्ट में सेवा कम होती चली जाती है, सेवा लेना ज्यादा हो जाता है। करने आए थे भगवान की सेवा और हो रही है उनकी खुद की सेवा। सब जगह यही मामला है। देखिए अब क्या हुआ, बड़े वाले पुजारी जी को रात में सपना, और सपना भी क्या आया कि फलानी फलानी तिथि में भगवान स्वयं मंदिर में दर्शन देने आएंगे, और ठीक रात 12 बजे आएंगे। सुबह जागे तो मन हुआ कि क्या करें, कह दें क्या लोगों से, हंसेंगे लोग, ऐसा कहीं होता है सपना अपना कहीं सच्चा निकलता, और वो भी ऐसा सपना कि भगवान ने खुद कहा कि हम आएंगे और दर्शन देंगे, संभव ही नहीं। अगर सच्ची सच्ची भगवान आ जाए तो विश्वास भी नहीं होगा, पत्थर वाले पे ज्यादा विश्वास है, उसके मन में विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कहीं हो सकता है सच्ची में आएंगे क्या भगवान, आइए बच्चे मिलता है उसमें किसी से। लेकिन दूसरे दिन फिर आएगा वही सपना, फिर इसी तिथि में और भगवान आएंगे, वो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा। अब तो भगवान से अगर सच्ची में आ गए और चार लोगों को नहीं बताया तो अपनी बदनामी होगी, इसलिए बता देना चाहिए मीटिंग बुलाई गई। हाँ, मतलब मीटिंग बुलाना पड़ती है इन सब कामों के लिए, ऐसे निर्णय नहीं ले सकते आप, बुलाना पड़ी मीटिंग कि सब आओ, मुझे सपना आया, कोई हंसना मत, भगवान ने स्वयं सपना दिया कि वे आएंगे चलाने चलाने दिन आएंगे, रात 12 बजे आएंगे, क्या करना है सब लोग क्या करें पहले, मतलब मंदिर की सफाई करवाने के लिए, सफाई करवाने के लिए एस्टिमेट कितना आएगा, कितना नहीं, सब तैयारी करना पड़ेगी, मैं अकेले थोड़ी करूँगा, सबकी परमिशन होगी तब करूँगा। मीटिंग काय के लिए होती, मीटिंग इसी के लिए होती, अपने आप ही ऐसे ही होता है। जैसे पाकिस्तान में यानी कहाँ से कहानी दिखी होगी, सब ऐसे ही चलता है अपने आप ही, सारे अच्छे अच्छे कर्म भी इस तरह से हम इनका लाभ न लेकर के उन्हें नष्ट कर देते हैं, इनके फल को हम जैसे कि सहज और हार्दिक रूप से किया गया कर्म अनंत गुना फल देता है, ऐसे ही असहज अहंकार और संतोष पूर्वक किया गया कर्म 0 फल देता है। अब मीटिंग में क्या हुआ कि ठीक है भाई, वैसे तो सपने अपने सही नहीं निकलते, वैसे तो वेस्ट सही है, वेस्ट ठीक करना है कि अभी तो फिर से पिटाई करवाओ, सफाई करवाओ, तैयारियां करो। अब लेकिन ठीक है, जब बड़े बड़े पुरोहित जी के सपना आया भैया, बाद में कुछ होना या सच्ची में आ गए और ऐसा सब डला रहे तो अच्छा नहीं लगेगा, भगवान जी क्या सोचेंगे। तो सब ने क्या किया कि हो जान जो घर क्या, अब इसका तो होता है थोड़ा वर्ष हो जाएगा, करवा लो पुताई भी करवा लो, सफाई भी करवा लो, काम तो जिसको लगाना है पैसे वैसे सब तैयारियां होने लगी। लेकिन मन के भीतर ऐसा कहीं होता है, आते हैं क्या, मन के भीतर तो कोई तैयारी नहीं है कि भगवान आएंगे, तैयारियां बाहर सब है। हमारे साथ भी यही है सबके साथ, और हुआ क्या, हुआ यही कि वो दिन भी आ गया, बाहर की सारी तैयारियां हो गईं, लेकिन भीतर से कोई तैयार नहीं है। वो दिन भी आ गया और उस दिन अभिषेक करने वाला दिन है। आज भगवान आएंगे, भगवान आएंगे तो बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनना चाहिए। खुद भगवान आएंगे वैसे बनता है रोज, मतलब जिस दिन अगर ये मालूम पड़ जाए कि भगवान आएंगे उस दिन अपन श्रीफल लेके आएंगे। रोज भले ना लाते हैं श्रीफल, रोज क्यों कराएंगे श्रीफल? जिस दिन भगवान आएंगे उस दिन कराएंगे। जरा बढ़िया द्रव्य कराए, सजा के लाएंगे तो उस दिन बढ़िया बढ़िया द्रव्य और बढ़िया सामग्री खाने पीने की बनी। अब जब खाने पीने की अच्छी सामग्री बनेगी तो फिर खाए बिना कोई कैसे रहेगा? और इतने सारे पुजारी वो बिना खाए रह सकते हैं? तो अपन तो खाई दे जब आएंगे, जब आएंगे। सबने बढ़िया से खाया, अब बढ़िया से खाया और ड्यूटी लगा दी। हाँ, ड्यूटी लगाना पड़ेगी, सारी रात कौन खराब करेगा? कब आएंगे क्या पता, कौन करे सारी रात खराब? एक 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 घंटे 10 बजे तक तो सब लोग देखते रहेंगे, उसमें से कोई बात नहीं। फिर 11 से 12 तक कौन जगेगा, या 10 से 11 कौन जगेगा, 1 से 2 कौन जगेगा? सब क्या बड़े पुजारी को, सबसे बड़े पुजारी हैं तो उनको जरा वही वाला टाइम देना कि जो भगवान ने बताया। भगवान ने तो 12 बजे से 1 बजे के बीच बताया था, तो बड़े पुजारी को 12 से 1। हालांकि उनके मन में ये था कि सुमन जगो रात 12 बजे। हाँ, मन में ये थोड़ी था कि इनके इनके समय में आ जाएंगे। सबके मन में ये था कि आना तो वैसे ही नहीं है, फोकट है, अपन तो सुबह वाला ले लो, वैसे ही 4 बजे नींद खुल जाएगी, 4 से 5 तक जगे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता। लेकिन बड़े पुजारी जी को 12 से 1 वाला टाइम, उनने बहुत कोशिश तो करी, अच्छा खाया था, बहुत दिन के बाद को प्रसाद ऐसा बना था और बढ़िया खाया था। बहुत उनने कोशिश करी कि नींद ना आए, लेकिन इतना बढ़िया खाने के बाद नींद ना आए, ऐसा तो नींद भी बहुत सहानी है, वो ऐसे मौके देख के आती है। आई नींद और नींद नहीं, अभी लगी रही थी नींद और उसने में उनको लगा कि जैसे भगवान का रथ मंदिर की नींद से आकर के रुका, रथ के आने की आ रहा है। होगा ऐसे कहीं होता है क्या, भ्रम हुआ होगा वो? बहुत दिन से साइकोलॉजिकल इफेक्ट है मन के भीतर, आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है। अब की बार तो लगा कि जैसे रथ रुक गया और उसमें से भगवान उतरे हैं, क्योंकि उतरने की आवाज़ आ रही है। तो बाजू वाले धीरे से अपने से छोटे वाले है ना, अपने जूनियर जूनियर को कहा कि देखना जरा तुम्हें आई आवाज़, चलो देखो 12 से 1 का तुम्हारा क्या हुआ, हमारी नींद था। अरे तुम अपना अपना करो, हमें क्यों बता रही कि आए हो, तुम अपना देखो ना, हमारी नींद बेकार खराब कर रहे, कोई तैयार नहीं। और ये तो खुद भी नींद में थे, फिर उनको स्टेप चढ़ने की आवाज आई कि कोई सीढ़ियां चढ़ रहा आ रहा है। फिर एक बार मन में हुआ कि एक बार देख के लो कि कभी ऐसा कहीं होता है, और नींद इतनी गहरी लगी कि जब सुबह नींद खुली तब उठ करके देखा तो भगवान की मूर्ति गायब थी, और इतना ही नहीं, किसी के आने और वापिस लौटने और बाहर रथ रुकने के और फूलों की और हीरे जवाहरात की जो वर्षा हुई होगी आने से, वो सब जब दिखाई पड़ी तब छाती पीट पीट के रो रहे हैं कि हम भगवान के दर्शन से वंचित रह गए। कर्म तो पूरा किया था, साफ सफाई से लेकर के और जागने तक का कर्म पूरा किया था, लेकिन भीतर से मन जरा भी तैयार नहीं था। और ऐसे बेमन से किए गए सब कर्म ऐसे ही हमें अपने परमात्मा स्वरूप के दर्शन से विमुख रखते हैं, और कोई बहुत बड़ी चीज है। हम भी अगर निरंतर अपने उस आत्मस्वरूप से विमुख हुए हैं, तो इसी वजह से कि हमने अपने कर्मों को आज तक ठीक ढंग से नहीं किया, अपने को कर्ता मान करके या अपने को फल की आसक्ति से प्रेरित होकर के, और या कि दूसरे के अकल्याण के लिए स्वपर कल्याण की भावना से हार्दिक होकर सहज रूप से अगर हम एक छोटा सा कर्म भी दिन भर में तय कर लें, एक कर्म में बहुत सहज रूप से अपना कर्तव्य मान करके पूरे हार्दिक होकर के पूरे मन से और कल्याण की भावना से करूंगा, तो हमारा वो एक कर्म भी दिन भर में किया हुआ हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाएगा। हम चाहते हुए हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने, जैसे बने वैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करें, आज इसी भावना के साथ कि भगवान हमें सब दीजिए। हमारे भीतर इस तरह से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा है और हम नमोकार के साथ आज यही भावना भा रहे हैं कि हमारा जीवन समय रहते अच्छा बना सके। हम इसी भावना के साथ नमोकार करेंगे। ओ
आचार्य जी और विद्यासागर जी महाराज जी। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। करते हैं।